अब अल्लाह ताला मिसाल देते हैं, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, आइए सुनते हैं। फरमाया या वद्दु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि इसके पास हरा भरा बाग हो, नहरों से सैराब, खजूरों और अंगूरों और हर किस्म के फलों से लदा हुआ, और वैन इस वक्त एक तेज बगोले की जद में आकर झुलस जाए जबकि वो खुद बूढ़ा हो और इसके कमसिन बच्चे अभी किसी लायक ही ना हो। इस तरह अल्लाह ताला अपनी बातें तुम्हारे सामने बयान करता है, शायद कि तुम गौर व फिक्र करो। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था, तुम्हें पता ही किस शख्स की बात है? मिसाल तो समझ आ गई ना कि खूब माल कमाया, बड़ा खूबसूरत बाग था, फल फूल के दरख्त थे, एकदम आग आई, सारा बाग जल के रह गया। अब खुद बेचारा बूढ़ा है, बच्चे अभी छोटे हैं, तो कुछ नहीं होगा, यानी आप बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गया। फरमाया, ये वो शख्स है कि जो पिछली जिंदगी में नेकियां करता था लेकिन आखिरी जिंदगी में शैतान के धोखे में आके नेकियां छोड़ गया। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना। याद रखिए, कोई बड़ा बोल मुंह के आगे आ सकता है, पिछली सारी नेकियों पे पानी पड़ जाएगा। मत सोचिए कि हम नेकी कोई आज कर रहे हैं तो हमेशा ही करते रहेंगे, ये तब तक करते रहेंगे जब इस नेकी को ऑनर समझेंगे, जब इसको करके रातों को रोएंगे, तड़पेंगे, मेरे मालिक मुझे मेरी जगह से ना हटाना, मुझे इस काम से ना हटाना, वरना अल्लाह कहते लगे लगाए बाग तुम्हारे जला के रख कर दूंगा। ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो, जो माल तुमने कमाए हैं और जो कुछ हमने जमीन से तुम्हारे लिए निकाला, इसमें से बेहतर हिस्सा राहे खुदा में खर्च करो, बेहतर हिस्सा खर्च करो। ऐसा ना हो कि इसकी राह में देने के लिए बुरी से बुरी चीजें छांटने की कोशिश करने लगो। चंद सेकंड गौर व फिक्र करते हैं, देने से पहले क्या सोच रहे होते हैं ये देने दिलाने वाले? फटे हुए, खराब, गंदे, खराब कपड़े उठाकर किसी के हाथ में पकड़ाते हो, देख के वो क्या सोचेगा? अब अगले में जिसको कहना चाहिए कि रिसीविंग एंड पे खुद को लाकर सोचे, अल्लाह ताला कहते हैं, हालांकि वही चीज अगर कोई तुम्हें दे तो तुम उसे हरगिज लेना गवारा ना करो। जब किसी को कुछ दे, एक लम्हे के लिए सोच ले, उसकी जगह अगर मैं होती लेने वालों में तो मैं इसको पकड़ कर क्या सोचती? ठीक है, आपका पुराना उसका नया है, कोई शक की बात नहीं है, मासियां हैं, गरीब रिश्तेदार हैं, आपके दिल से उतरे हुए कपड़े वो खुशी खुशी पहनेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन फटा हुआ सी लीजिए, उदड़ा हुआ उसको सीधा कर दीजिए, धोने वाला उसको धो लीजिए, कुचला मुचला घड़े से निकला हुआ जोड़ा जाओ धो लेना, इस्त्री कर दे, नहीं, सजा के दीजिए। पुराना कपड़ा ऐसे दे कैसे लगे कि जैसे अभी नया कपड़ा आया, खुद भी ढंग से पहनिए। हर कपड़े को धोना, खराब करना और ढेरों ढेर रखना नहीं, दो चार दफा पहन लीजिए तहदीस नेमत के लिए, उसको साफ सुथरा करके किसी तरीके से दे दें किसी को, अल्लाह के रास्तों में दे दें, बंदों को दे दें। आप देखिए कि ये चीजें सीखने से आती हैं। हमारे कल्चर में हमने जो कुछ देखा हुआ है, अल्लाह की पनाह, बोरियों में बंद कपड़े, आज भी देखिए यहाँ से जब पाकिस्तान लोग जाते हैं बैगों में पुराने कपड़े भरे होते हैं और ढेरों ढेर जाते हैं, क्योंकि वहां से वापसी पे नए तो लेकर आने हैं। ये खूबसूरत तरीका नहीं है। मैं तो कभी पाकिस्तान में अपने कपड़े नहीं लेके जाती, क्यों? मुझे पता है वहां बहुत है, मेरी भाभियों, मेरी बहनों, मेरी खालाओं, मामियों के इतने कपड़े हैं कि मासियों ने वही पहन लेने हैं, साफ सुथरे, धुले धुलाए, अच्छे कपड़े आप स्कूल में ले जाते हैं। मैं खुद अपना अमल आपको सिर्फ इसलिए बताने लगी हूँ कि शायद किसी की गाइडेंस का जरिया हो। नए कपड़े जो मुझे कहीं से भी गिफ्ट में मिलते हैं, मैं उनको जमा किया, कोई भी स्टॉल लगता है स्कूल का लगा के उसमें करा, स्कूल को पैसे मिल जाते हैं, पहने हुए कपड़े अब उसको क्या करें, माशाल्लाह साथी हैं, मोहब्बत में है। अभी आने से पहले मैंने, हमारी आयतें ऐसी चल रही थी, वहां हमने ये पारा पढ़ लिया, तो मैंने कहा कोई लेगा कपड़े मेरे? जी वो तो खुशी से लेते हैं, साफ सुथरे, ठीक, 2 दिन लगाकर सारे कपड़े धो धुला के जो भी, और मेरे कपड़े ऐसे होते ही नहीं अल्लाह के हुक्म से, कि मैंने कभी बहुत फालतू पहने ही नहीं है। खैर, किस्सा मुख्तसर, जो भी बैग थे भरकर स्कूल में ले गई। मैंने कहा आपने इसमें से जिसने जो लेना लेंगे और जो दिल करता अपनी खुशी से स्कूल में डाल दें। यकीन करें, हजारों रुपया स्कूल को, हजारों करोन जमा हो जाता है मोहब्बत में, और विद इन मेरा हले 1-1.5 घंटा दोनों बैग खाली, चादरें भी। मैंने क्या करना है ढेरों ढेर जमा रख के, अल्लाह उतने और दे देते हैं। हम एक कपड़े को रगड़ते रगड़ते रगड़ धो, कहते हैं अभी तो उसका रंग भी ठीक है, खराब बोले फिर दूंगी अभी बटन, और देने से पहले बटन उतार लो, बड़े महंगे आए थे ये दुपट्टा, नहीं नहीं इसके समय नया जोड़ा बनाऊंगी, ओ हो ये लेस तो 500 रुपये गज आई थी, उधेड़ो उधड़ा पुधड़ा जोड़ा दे के अल्लाह को क्या आप उससे मांगते हैं? सलीके से मांगे। आप देखिए आगे आ रहा है, हिकमत है ये भी, कुछ लोग थोड़ा देकर ज्यादा अजर पा लेते हैं, और आप इस नियत से करें कि जो आपकी चीज से पहन के इस नमाज पढ़ेगा आपको अजर मिलेगा, बेनमाजी को आप मत दीजिए अपनी चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें भी सीखने की होती हैं। आज हम औरतों का ज्यादा वक्त अपने घर के सिर्फ कपड़े लत्ते को ठीक करने में गुजरता है। घर में यकीन कीजिए जब भी सफाई करेंगे सबसे ज्यादा फैलावा कपड़ों का, धोने वाले, इस्त्री वाले, समेटने वाले, अलमारियों में कपड़े, मौसम बदल रहा है कपड़े चेंज हो रहे हैं, स्वेटर निकल रहे हैं, पतले कपड़े, मोटे कपड़े, बाजार जाते हैं कपड़े कपड़े, आप देखिए कि आप दूसरों का भी तो हक समझें। असल दिल में बुखल है, हिरस नहीं जाती। 10 बना लिए, पीछे से देने को नहीं दिल करता। एक असूल बना लें, कभी आपके फालतू कपड़ा नहीं होगा। जो आपके हाथ में बस वही है आपके कपड़े। क्यों? एक बनाया तो एक दे दिया। लॉन का एक सूट नया बना है, लॉन का एक दे दीजिए। काम वाला एक नया सूट बना है, काम वाला दे दीजिए। गरम एक सूट नया अल्लाह ने आपको दे दिया, दूसरा पिछला पहन चुके हैं, उसको अच्छा करके अपनी किसी प्यारे को दे दीजिए कि अब आप शौक पूरा कर लें। कभी नहीं खत्म होगा। दिल से हिरस निकल जाए, इंशाल्लाह बात जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से आसान होती है। लेकिन वही बात है कि ये सारी बातें यहाँ तो समझ आती हैं, क्यों नहीं अमली तौर पे आती? क्योंकि जब देने लगते हैं तो शैतान विस्पर करता है, क्या? अश्शैतानु यईदुकुमुल फक्र व यामुरुकुम बिल फख्शा। शैतान तुम्हें मुफलसी से डराता है। पता कौन सी मुफलसी? नहीं, शायद कभी पहन लो। बड़ा दिल करते हैं वो कहते हैं ना, खातिम ताई की कब्र पे लात मारते हैं, कहते हैं अब ये जोड़ा मैंने दे देना, निकाल के पहले उसकी आंखों के सामने रखते हैं 2-4 दिन के, देखती रहूं अब ये जा रहा है, आखिरी दीदार कर लो। फिर जब देने लगते हैं फिर कहते हैं नहीं, वो एक शादी आ रही, शायद मैं पहन ही लूंगी। कितने जोड़े शादियों में सिस्टर्स के मैंने खुद अपनी आंखों से अपनी कजन्स को देखा है, ये पहनने थे फिर नहीं पहने क्योंकि नए पहन लिए, तो भी इसको दे दीजिए। नहीं, हौसला नहीं बढ़ता। शैतान आपको मुफलसी से डराता है और शर्मनाक तर से अमल इख्तियार करने की रग़बत दिलाता है, मगर अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शिश और फजल की उम्मीद दिलाता है। अल्लाह बड़ा फराख दस्त और दाना है, जिसको चाहता है हिकमत अता करता है। इसको हाईलाइट करें। हिकमत वैसे तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन यहाँ हिकमत से मुराद इन्फाक फी सबीलिल्लाह के खूबसूरत तरीके। कब, कहाँ, किसको देना है? फरमाया, जिसको चाहता है हिकमत अता करता है, जिसको हिकमत मिली इसे हकीकत में बड़ी दौलत मिल गई, और इन बातों से सिर्फ वही लोग सबक लेते हैं जो दानिशमंद भी हैं। क्या पता चला कि एक अच्छा किसान ऐसे बीज नहीं जाके डाल देता। मैं $1 नहीं दूंगी अपना किसी को अगर मुझे पता चले कि ये जाया हो जाएगा। मैं किसी को एक दुपट्टा नहीं दूंगी, मैं एक लुकमा नहीं किसी को दूंगी अगर मुझे पता चले वो बिन में फेंक देगा। मैं नहीं दूंगी आपको, क्यों नहीं दूंगी? इसलिए कि जाया तो नहीं करना। तो किसी जगह भी देने से पहले देखिए कि वो उसको इस्तेमाल करेगा, आपकी वो चीज की कोई कदर अफजाई करेगा। आप खुद तो केयर से पहन लेते हैं, जिसको मुफ्त में मिलता है वो बेकदरी से फेंकता है, ऐसा ना करें। तो ये चीजें सब कुछ यहाँ हिकमत की बात है, और हिकमत कहते ही इसको है कि जो चीज जब जहां जैसी होनी चाहिए वैसे हो। रेशियो प्रोपोर्शन का ठीक होना। फरमाया, तुमने जो कुछ भी खर्च किया हो और जो नजर भी मानी हो, अल्लाह को इसका इल्म है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं है। अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते में खर्च करने वाला बना दे। एक छोटी सी अमली सूरत आ गई, ये आपको यहाँ एक फ्लावर बके दिख रहा होगा, सामने रखा हुआ, बड़ा खूबसूरत सा है। कल कुछ सिस्टर्स काफ़ी दूर से आई थी तो वो लेकर आई, तो मैंने उनको उसी वक्त उनसे इजाज़त ले ली थी कि मैंने एक्सेप्ट किया है। लेकिन आप देखिए कि अगर ये मैं अपने घर में ले जाऊंगी, मेरे कमरे में कितने 2, 4, 10 दिन पड़ा रहेगा, तो मैं देखूंगी। तो आदत है मेरी, जब कुछ देता है तो फिर अव्वल तो मुझे दुख होता है कि इतने पैसे लोग क्यों लगाते हैं। लेकिन अब उन सिस्टर्स के सदका जारिया के लिए, आप में से जो भी चाहे इसको लेना, लेके इसके पैसे सदका जारिया में, इधर दावा बॉक्स रखा हुआ है, इनको दे दीजिए, ये उसमें डाल देंगे, आप ले जाइए। लेना चाहते हैं कोई ये फूल? आप लेना चाहती हैं, ले लीजिए अपनी खुशी से, जो आपका दिल करता है इनको वहां दावा बॉक्स में दे दीजिएगा। अब ये क्या हुआ, वो खरीद के लाई, मैंने कबूल किए, एक दिन इधर पड़े रहे, कल देने थे तो आप लोग निकल गए थे, अब आज आप ले जाए, मैं अब आपको इसकी एक और नेकी सुनाती हूँ, आज मियाँ साहब को दे दें, ये आपके लिए लाई हूँ। एक तीर में 5-6 शिकार तो करें। मियाँ साहब ने थोड़ी देर देख के छोड़ देने, मुझे पता है वो आपको ही कहेंगे अब तुम ही रख दो। बड़ा बेटा आएगा ना, इसका एक फूल तोड़ के, बेटा ये आपके लिए लाई हूँ, ये बेटी आप, इससे कितने रिश्ते कमा लीजिएगा आप। हमें चीजों को केयर नहीं करना आता। कभी ऐसा होता है ना, वहां एक सिस्टर थी, उन्होंने लेके कहती अब ये सारे फूल सब में बांट देती हूँ, उन्होंने सबको एक एक दिया। मैंने कहा ये सब जाए अपने अपने हस्बैंड्स को दें कि ये हम दौरे कुरान की खुशी में आपको दे रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। और जो पैसे आप देंगी, पता नहीं वो किस सीडी, किस रिकॉर्डिंग, किस जगह वो उन सिस्टर्स के नाम पे चले जाएंगे जिन्होंने इसके ऊपर पैसा खर्च किया। तो आप देखिए कि ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, ये हमें फिर बहुत ज्यादा इस चीज का एहसास दिलाती हैं कि पैसे का इस्तेमाल दुरुस्त करना चाहिए। हम बाद सब अपने माल को बहुत ज्यादा जाया करते हैं। अब माल खर्च करने की सूरतें कैसे, मतलब कोई कह सकता है कि अच्छा जी लोगों को बताया क्यों जा रहा है, क्यों बताना चाहिए? तो यहाँ आप देखिए 4 मुमकिन सूरतें होती हैं माल खर्च करने की, उसके लिए अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया। इन तुब्दु सदकाति फने माहिया, अगर अपने सदकात एलानिया दे दो तो ये भी अच्छा। अब आप कहते हैं दूसरों को बता के देंगे तो रियाकारी नहीं होगी? अल्लाह कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐलान करके दे दो। लेकिन अगर छुपा कर हाजत बंदों को दो तो ये तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है। तुम्हारी बहुत सी बुराइयां इस तर्ज़ अमल से महव हो जाती हैं, यानी दूर हो जाती हैं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को बहरहाल इसकी खबर होती है। अब आप देखिए कि क्या पता चला, इसमें आपको भी एक जनरल रूल बता देती हूँ कि जब आप फर्ज ज़कात दें, मतलब जैसे ज़कात तो हम सब नहीं देनी होती है, तो फ़र्ज़ ज़कात दिखा कर दे सकते हैं। मतलब आप सब यहाँ बैठे हैं, आप में से कोई सवाल करता है, अच्छा मैं सदका जारिया में ज़कात दे सकती हूँ, अच्छा मैं फ़लाम प्रोजेक्ट में दे सकती हूँ, आपको कहा जाता है दे सकते हैं, आप कहते हैं ठीक है ला के दे दें। जो ही आप देंगी 10 बंदे और सोचेंगे अरे मैंने भी ज़कात देनी है, अच्छा मैं भी भूली, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन नफिल दे रहे हैं, सदका दे रहे हैं, ऐसे ही अपने नहीं दिल के बोझ को दूर करने के लिए, तो छुपा के दे दें, क्योंकि फिर नहीं तो अपने दिल में जरा बड़ाई का एहसास होगा कि देखो मैं कितना दे रही हूँ। दूसरी एक चीज़ होती है किसी इंसान को दे रहे हैं, मतलब मासी है, ड्राइवर है, आपका कोई गरीब रिश्तेदार है, जब उसको दे तो छुपा के दे, क्यों? कि उसकी इज्जत है ना, उस पर हर्फ ना है। लेकिन किसी इदारे को दे रहे हैं, मस्जिद को दे रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं दिखा के देने में, क्योंकि उसमें किसी एक इंसान को तो नहीं मिलता। तो ये भी वो बातें हैं कि जिससे आप किसी को इसलिए दिखा रहे हैं कि अगला भी देख कर दे, और आप इसलिए दिखा रहे हैं कि अगला मेरी तारीफ करे, दोनों की बातों का अल्लाह को पता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को हिदायत बख्श देने की जिम्मेदारी आप पर नहीं, हिदायत तो अल्लाह ही जिसे चाहता है देता है। बस लोगों ने कहना शुरू कर दिया हम अपने काफिर रिश्तेदारों को बिल्कुल नहीं देंगे, जैसे आज भी कुछ लोग गलती करते हैं, वैसे शायद आपको मेरी बात से फायदा हो। मासी को क्या कहते हैं, नमाज पढ़ो फिर तुम्हें जोड़ा दूंगी। अब वो आपका जोड़ा लेने के लिए मासी जी 2 दिन नमाज पढ़ती हैं, जोड़ा लिया फिर नमाजें खत्म, ऐसी शर्तें ना लगाए। बच्चों को आप कहते हैं अच्छा बेटा नमाज पढ़ो फिर पैसे दूंगी, नहीं कीजिए, लालच आएगा, दिखावे के लिए आएंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई नेकी का काम कर रहा है नहीं कर रहा, तुम शर्त बांध के उसको ना दो कि अब तुम नेक होगे तो फिर दूंगा। और राह खैर में जो माल तुम लोग खर्च करते हो वो तुम्हारे अपने ही लिए भला है। देखिए कितना प्यारा जुमला है, हम सोचते हैं किसी और को इससे फायदा होगा, कहा नहीं ये तुम्हारे अपने हक में फायदे की चीज है, आखिर तुम इसीलिए तो खर्च करते हो कि अल्लाह की रजा हासिल हो, सच है ना? 3 सेकंड तस्किया, क्या वाकई में अल्लाह की रजा के लिए खर्च करती हूँ, दूसरों को दिखाने के लिए तो नहीं खर्च करती? तो जो कुछ माल तुम राह खैर में खर्च करोगे इसका पूरा पूरा अजर तुम्हें दिया जाएगा, और तुम्हारी हक तलफी हरगिज़ ना होगी। सुभान अल्लाह, कितना प्यार अल्लाह को अपने बंदे से, ऐसे लगता है कि दिल में भी ना कोई ख्याल आ जाए, इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें पूरा वापस करूंगा। आप देखिए कि अक्सर बच्चों के दिल छोटे होते हैं ना, टॉफी भी उनसे मांग लेना तो साथ ही उनका ऐसे चेहरा बदल जाता है, दिल छोटे हैं ना, हम छोटे हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला कहते हैं फिक्र नहीं करो, तुम जो दोगे मैं उसे वापस करूंगा। अब अगली आयत बहुत खूबसूरत है, जो हमारा पारे का थीम था कि नस्लों के दीन की हिफाजत, इल्म के ऊपर खर्च करना, ये आयत खास तौर पे खर्च की एक यूनिक किस्म को जाहिर करती है। आइए पहले पढ़ते हैं फिर इस पर एक हल्का सा वाक्या समझ के फिर आगे चलेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं लिलफुकराए लजीन अखसरू फी सबीलिल्लाह ला यस्ततीउना दरबन फिल अर्द, खास तौर पर मदद के मुस्तहिक वो तंग दस्त लोग हैं। यानी जहन में सवाल तो आता ही है ना कि सबसे ज्यादा अच्छा खर्च किस पे करना है, हालात और वक्त के मुताबिक तो जो भी जरूरतमंद है उसको देना लाजिम है, लेकिन ओवरऑल अगर बहुत सारी कैटेगरीज हैं और आप किस पे दें, तो अल्लाह ताला कहते हैं सबसे ज्यादा वो लोग मुस्तहिक हैं जो तंग दस्त हैं, जो अल्लाह के काम में ऐसे घिर के कि अपने जाती कस्बे माश के लिए जमीन में कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते। इनकी खुददारी देखकर नावाकिफ आदमी गुमान करता है कि ये खुशहाल हैं, तुम इनके चेहरों से इनकी अंदरूनी हालत पहचान सकते हो, मगर वो ऐसे लोग नहीं कि लोगों के पीछे पड़कर कुछ मांगे। इनकी मदद में जो कुछ माल तुम खर्च करोगे वो अल्लाह से पोशीदा नहीं रहेगा। इस आयत के साथ अबू हुरैरा का नाम ऐसे जुड़ा हुआ है कि जैसे तस्बीह के अंदर मोती जुड़े होते हैं। सिर्फ 3 साल उनको मिले, यानी आज की शख्सियात में आप अगर अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु को भी थोड़ा सा समझ लें, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो चुके थे लेकिन कबीला दौस में थे, फारसी नस्ल से थे। खैबर की जंग में ये मदीना में नबी सल्लम से मिलते हैं, और जो साथी सीरत पढ़ चुके हैं खैबर सन 7 हिजरी में हुई थी, सिर्फ उसके बाद नबी सल्लम 3 साल तक जिंदा रहे। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने इस 3 साल में नबी सल्लम से क्या ले लिया, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, सबसे ज्यादा हदीसें जिस शख्स ने रिवायत की हैं वो अबू हुरैरा हैं। वो अपना वाकया सुनाते हैं, कहते हैं कि मैं नबी सल्लम के साथ यूं चिपका रहता था, जिधर आप जाते मैं आपके साथ जाता, जिधर आप बैठते मैं बैठता, क्यों आपसे लग नहीं होता था कि कहीं आप मेरी गैर मौजूदगी में किसी को कोई बात दीन की बताएं। और नबी सल्लम इस तरह हमारी तरह महफिल सजा के नहीं सिखाते थे, नबी का तो बोलना भी हदीस थी, वमा जनते को अनिल हवाइन हुआ इल्ला वाकई यूहा। तो वो कहते थे कि मैं नबी की जुबान से हर बात बराह रास्त सुनना चाहता था। मुझे डर ये था कि अगर मैं कमाने चला गया, कारोबार करूंगा, तो नबी सल्लम की कुछ बातों से महरूम रह जाऊंगा, तो मैं आपके साथ ही रहता हत्ता के फाकों की नौबत आ जाती। कहते हैं मुझे इतनी भूख लगी होती थी, लेकिन मैं सिर्फ इस शौक से उठता नहीं था कि मेरी गैर मौजूदगी में इल्म ना कुछ मिस हो जाए। हम सारे काम अपने निपटा के फिर इल्म की महफिल में बैठ जाएं, फिर भी हमें सब आ जाए, ये नहीं होगा। ये याद रखिए, ये डिवोशन बहुत ज़रूरी होती है। कहते हैं एक दिन इतनी सख्त भूख लगी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, बल्कि बाज़ औक़ात तो कहते हैं कि मैं बेहोश हो जाया करता था और लोग समझ रहे थे कि मुझे मिर्गी का दौरा पड़ा। लेकिन मैं ये नहीं कह पाता था कि लोगों मैं बीमार नहीं हूँ, मैं भूखा हूँ। अब देखिए कि ये हैं वो लोग कि जिन्होंने अपने आप को किसी जगह से इस तरीके से जोड़ दिया कि उन्होंने इस चीज़ को हटना नहीं है। अब क्या हुआ, एक मौके बाहर निकले, कहा चलो देखता हूँ शायद कुछ मिल जाए। उधर से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु आ रहे थे। कहा मैंने दिल में सोचा अब मुँह से क्या कहूँ कि भूखा हूँ, खाना दूँ, ज़ाहिर इंसान की गैरत होती है, इज्जत नफ्स बहुत बड़ी चीज़ है। कहा मैंने उनसे सूरह दहर की एक आयत पूछी कि कुछ लोग हैं जो लोगों को अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। कहा मैंने कहा उमर जरा इस आयत का मतलब तो समझा दें। कहा उमर ने मुझे लंबी चौड़ी तफसीर बता दी जो मुझे पहले ही आती थी। इनका ख्याल क्या था कि वो मेरी इस बात से शायद समझ जाए कि मैं भूखा हूँ और मुझे कुछ ऑफर कर दें, लेकिन उमर नहीं समझे उस वक्त, कुछ और सोच रहे थे, चले गए। कहा अच्छा ठीक है, ये बातें तो मुझे पहले भी पता थी। थोड़ी देर के बाद देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे। आप पहचान गए, कुरान में आ रहा है ना कि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तुम उनके चेहरों से पहचानते हो कि वो किस तरह से प्यासे हैं, भूखे, तारीफ हूँ भी सी माँ हूँ। कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे अपने पास ले आए, आप समझ गए मैं भूखा हूँ। इतनी देर में आपके पास किसी ने दूध का एक प्याला भेजा। मैंने जब दूध का प्याला देखा तो वो कह ले कि भूखा और क्या आलम हुआ होगा। कहा मेरा दिल करे अल्लाह के नबी सल्लम मुझे कहें ऐ अबू हुरैरा ये सारा तुम पी लो, पर जरूरत फिर भी नहीं है। देखिए अदब बादब बा नसीब, बेअदब बे नसीब। कहा अबू हुरैरा जाओ सब असहाबे सुफा को बुला के लाओ। असहाबे सुफा क्या थे आज के दौर में, कह लें हॉस्टल में रहकर कुरान सीखने वाले तालिबे इल्म, 70-80 के करीब लोग थे, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इनकी तादाद आती है। कहा कि उनको लेकर आओ, और वो भी इन्हीं की तरह बेचारे भूखे थे। कहा अच्छा अब दिल में क्या, लेकिन देखिए समय ना वह आना, ये असल समा बसर अगर आज उम्मत मुस्लिमा में आ जाए, बेस्ट टीम वर्क हो जाए। ये जो हम अपनी मर्जियां करते हैं और सिस्टम को तोड़ते हैं ना, उसकी वजह से दीन फिर पनप ही नहीं पाता। कोई नहीं कहा, सब आके बैठ गए। कहा सबको ऐसे बिठा दो, और आप देखिए अबू हुरैरा का एक और इम्तिहान। कहा अबू हुरैरा आप ये दूध का प्याला पकड़े और राइट हैंड से शुरू करके सबको पिलाएं। कह रहे मैं सोच रहा हूँ इतनों के बाद मुझे क्या मिलना है, लेकिन जरूरत नहीं थी। क्या सब्र था, क्या करेक्टर बिल्डिंग थी, क्या शख्सियात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार कर गए, क्या उनके तालिब इल्म थे और क्या वो उस्ताद थे। अल्लाह ताला बस हमें ऐसा कर दे या हमें ऐसा कोई मिला दे। खैर अबू हुरैरा कहते हैं कि फिर जो मैंने बरकत देखी, पहले शख्स ने दूध पिया, खूब पिया, जब मैंने उससे वापस लिया तो प्याला बिल्कुल भरे का भरा जैसा था। ये नबी सल्लम की बरकत थी, मौजजा था। 70 लोग दूध पी गए और कहते हैं आखिर में वो प्याला वैसे का वैसा भरा था। आज अगर ये उम्मत नबी सल्लम की सुन्नतों पे चले, उनके तरीकों पे चले, यही बरकतें आज भी मिलेंगी। कहते हैं आखिर में सिर्फ मैं और नबी सल्लम रह गए। कहा अबू हुरैरा अब तू पी। कहा नहीं अल्लाह के नबी आप पिए। कहा नहीं अब तू पी। कहा मैंने पिया, पूरा पी लिया, फिर प्याला भर गया। कहा और पी। मैंने वो भी पी लिया, फिर पी और पी। कहते हैं कि उसके बाद नबी सल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा और पी। मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लम अब तो नाहनों में से भी दूध टपक पड़ेगा, और सब का बचा हुआ दूध फिर नबी सल्लम ने पिया। हैं आज ऐसे लोग, सफेद पोछ लो, याद रखिए डेडिकेशन और इल्म के ऊपर खर्च करना, जहां से इल्म की शमें फूटे, आज के दौर का बेहतरीन मसरफ यह है। जलजला जदगान को लोग देते, भूखों को लोग देते, रिफ्यूजीज को लोग देते, सारी दुनिया में एनजीओस बनी पड़ी हैं। इल्म की नशरोशात पे कौन देगा, इल्म वाले देंगे। इस्लाम को फैलाने पे कौन देगा, मुसलमान देंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको बेहतरीन खर्च कहा। इसके बाद देखिए चार मुमकिन सूरतें खर्च करने की। अल्लाह ताला फरमाते हैं लज़ीना युन्फिकून अम्वालहुम बिललैलि वन्नहारि सिर्रन वअलानिया, जो लोग अपने माल शब रोज खुले और छुपे खर्च करते हैं, इनका अजर इनके रब के पास है और इनके लिए किसी खौफ और रंज का मुकाम नहीं। यानी रात है तो सुबह का इंतजार नहीं करो, रात में खर्च कर दो। सुबह है तो रात होने का इंतजार नहीं करो। अकेले हो तो अब ये ना कुछ चार लोग आते हैं जरा उनके हाथ में ही थैला पकड़ाते हैं, नहीं। और अगर सबके बीच में हो तो ये ना सोचो कि अकेला होऊंगा तो दे दूंगा, जिसने देना है वो दे के अपनी जान को फारिग कर ले। इससे फायदा क्या होगा कि लोग अपने आप को बेहतरीन तौर पर लेकर आएंगे। अब यहां तक आप देखिए कि सदके का टॉपिक पूरा हुआ है। आपने कहां से शुरू किया था, जिसमें एक बाली से 700 बालियों की बात थी। अगर आप देखें तो इस सब में फी सबीलिल्लाह खर्च की बात हुई ना। फी सबीलिल्लाह क्या होता है, लोगों को अल्लाह से जोड़ने के रास्ते में खर्च करना। दीन के लिए अच्छे लोग अगर तैयार करने हैं, अगर हमने नई नस्लें तैयार करनी है, तो याद रखिए जो खर्च किया जाता है उसकी खैर मुआशरों की तरफ पलटती है। लोगों की भूख और प्यास को मिटाना भी अच्छा है, लेकिन जो इल्म की प्यास और जो तस्किया और रूहानियत को पिटाना है वो सबसे बड़ी बात है। लोगों को चोरियों से रोकिए। मैं अक्सर सोचती हूँ हमारे मुल्क में बैगर्स क्यों हैं, इतने इतने गरीब क्यों हैं? इसलिए कि लोगों से मांगने की बुराई का नहीं पता, ऐसी प्रोफेशनल बैगर्स हैं। चोरियां इतनी की होती हैं क्योंकि लोगों को चोरी की बुराई नहीं पता। तो जो हम फकीरों को जाके ऐसे थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, अगर उनसे उनके लिए इल्म का कुछ काम कर दिया जाए तो इंशाल्लाह वो खुद भी बचेंगे। और अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं कि तुम अपनी हैसियत से वक्त दे रहे हो, माल दे रहे हो, स्किल्स लगा रहे हो, मैं अपनी शान से तुम्हें पलटाऊंगा। और याद रखिए कि अल्लाह सुबहान तआला को इस बात पर कि कोई बंदा उसके दीन पे या उसके बंदों पे खर्च करता है या गरीबों पे लगाता है, अल्लाह सुब्हान ताला उसको अपने लिए ले लेता है। अब यहाँ से बदतरीन खर्च की बात आएगी, यानी सदके की बात इससे बहुत ज़्यादा और भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ इतनी बात करके अब आगे कहा कि बेहतरीन चीज़ तो थी सदका। और जितना सदका दोगे ना उतना मुआशरे से करप्शन, बुराई और सूद ख़त्म होगा। अब अगली आयत का मैं आज कोशिश करूँगी सिर्फ तर्जमा पढ़ूँ। तर्जमा ही अपनी जगह थॉट पर वोकिंग है, आंखें खोलने वाला है, सोचने वाला है। और अल्लाह सुबहान तआला के अल्फाज के अंदर जो खूबी है उसको अगर आप और मैं देख लें तो ये भी बहुत है। आइए देखते हैं, तवील आयत है लेकिन इसमें सूद खाने खिलाने की बुराई का तस्कर आता है। आयत नंबर 275, अल्लज़ीना याकुलूना अर्रिबा ला यकूमूना इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैयु मिस्लुर रिबा। मगर जो लोग सूद खाते हैं इनका हाल उस शख्स का सा होता है जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो। क्योंकि सूदखोर जो होता है ना दुनिया में माल की मोहब्बत में पागल हुआ होता है, कब्र से निकलेगा तो ऐसे होगा जैसे किसी शख्स को जिन्नों ने साया किया हुआ है। और इस हालत में इसके मुब्तला होने की वजह यह है कि वो कहते हैं तिजारत भी तो आखिर सूद ही जैसी चीज है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम। इसको हाईलाइट करें, लोग कहते कहाँ लिखा है सूद हराम है, तो ये यहाँ लिखा है 275 में, सूद हराम है। लिहाजा जिस शख्स को इसके रब की तरफ से ये नसीहत आ पहुंचे और आइंदा के लिए वो सूद खुआरी से बाज आ जाए, तो जो कुछ वो पहले खा चुका सो खा चुका, इसका मामला अल्लाह के हवाले है। और जिस हुक्म के बाद फिर दोबारा इसी हरकत को दोहराएगा वो जहन्नमी है जहां वो हमेशा रहेगा। ये दूसरा नंबर भी नोट कर लें। लोग कहते हैं कहाँ लिखा है, नंबर एक सूद हराम है, दूसरी बात है जहन्नमी है वो शख्स, और तीसरी बात उसमें हमेशा रहेगा, और चौथी बात यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस्सदकात, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को नशोनुमा देता है। तीसरी दलील कुरान की एक आयत से सूद की हुरमत के बारे में, अल्लाह किसी नाशुक्रे बदअमल इंसान को पसंद नहीं करता। हाँ जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करें और नमाज कायम करें और जकात दें इनका अजर बेशक इनके रब के पास है और इनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं। अफसोस है कि आज प्लेग की तरह सूद इंसानियत को लगा हुआ है। इस हदीस से इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आ रही है, चौथे पारे में भी आएंगी आयतें, तीन चार जगह आएंगी। और आपको पता है कि सूद पे 60 से ज्यादा हदीसें मौजूद हैं, चार आयतें हैं कुरान पाक में, आगे जाके बात करेंगे। लेकिन आज जो कुरान की आयतों की शिद्दत है इसको महसूस करने की जरूरत है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और जो कुछ तुम्हारा सूद लोगों पर बाकी रह गया इसे छोड़ दो। अगर वाकई तुम ईमान लाए हो लेकिन अगर तुमने ऐसा न किया तो आगाह हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। अब भी तौबा कर लो और सूद छोड़ दो तो अपना असल सरमाया लेने के तुम हकदार हो, न तुम जुल्म करो न तुम पर जुल्म किया जाएगा। तुम्हारा कर्जदार तंग दस्त हो तो खात खुलने तक इसे मोहलत दो, और जो सदका कर दो वो तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम समझो। उस दिन की रुसवाई और मुसीबत से डरो। देखिए ये आखिरी आयत है तरतीब नजूल के एतबार से, बास कहता है कि शायद के बाद नबी सल्लम बहुत थोड़े दिन जिंदा रहे। सूद की आयतों के बाद अल्लाह सुबहान तआला ने वो आयत दे दी कि जिसको पढ़ने के बाद वाकई अपनी वापसी याद आ जाती है। वत्तकु यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून। उस दिन की बुराई से बचो जबकि तुम अल्लाह की तरफ वापिस होगे, वहां हर शख्स को उसकी कमाई भी नेकी और बदी का बदला पूरा मिल जाएगा और किसी पर जुल्म हरगिज ना होगा। अल्लाह ताला उस दिन की फिक्र आज ही लगा दे। अब आगे कर्ज की आयत है, कुरान पाक की तवील तरीन आयत कर्ज के बारे में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी। हमने इस पर एक पूरा सेमिनार किया था अटलांटा में, एक बुक है कर्ज के मसाइल और फजाइल। मैं कह सकती हूँ कि आज के दौर में हर ब्रदर और हर सिस्टर को वो बुक पढ़ने की जरूरत है, कर्ज के मसाइल और फजाइल, डॉक्टर फजल अली साहब की ये किताब है। यकीन करें जिन दिनों हम पढ़ रहे थे ऐसे लग रहा था कि हर लफ्ज़ आज के इस दौर में जरूरी है कि हर एक को समझ आए। दूसरों को कर्ज देने की फजीलतें, हर दिन उतना सदका करने का अजर है, और इसी तरह से फिर जब कर्ज के अंदर सूद मिल जाता है तो फिर तो वो एक नाकाबले तलाफी जुर्म बन जाता है। अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे कि हम ऐसी चीजों को सीखें और दूसरों को सिखाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायन्तुम बिदैन। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब किसी मुकर्रर मुद्दत के लिए तुम आपस में कर्ज का लेन देन करो तो इसे लिख लिया करो। पहली शर्त, भाई बहनों में भी लेन देन कर रहे हैं ना तो लिख लीजिए, क्योंकि बाद में गलती नहीं लगती। फरीकैन के दरमियान इंसाफ के साथ एक शख्स दस्तावेज तहरीर करे, जिसे अल्लाह ने लिखने पढ़ने की काबिलियत बख्शी हो इसे लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए। वो लिखे और इमला वो शख्स कराए जिस पर हक आता है, यानी कर्ज लेने वाला, और इसे अल्लाह अपने रब से डरना चाहिए कि जो मामला तय हुआ है इसमें कोई कमी बेशी ना करे। लेकिन अगर कर्ज लेने वाला खुद नादान या ज़ईफ़ हो या इमला ना करा सकता हो तो इसका वली इंसाफ के साथ इमला कराए, फिर अपने मर्दों में से दो मर्दों की इस पर गवाही करा लो, और अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें हों, ताकि एक भूल जाए तो दूसरी इसको याद दिला दे। ये गवाह ऐसे लोगों में होने चाहिए जिनकी गवाही तुम्हारे दरमियान मकबूल हो। गवाहों को जब गवाह बनने के लिए कहा जाए तो इन्हें इनकार ना करना चाहिए, मामला ख्वाह छोटा हो या बड़ा। मियाद की तय उनके साथ इसकी दस्तावेज लिखवा लेने में सुस्ती ना करो। अल्लाह के नज़दीक ये तरीका तुम्हारे लिए ज्यादा मबनी बर इंसाफ है, इससे शहादत कायम होने में ज्यादा सहूलत होती है और तुम्हारे शकूक व शुबहात में मुबतला होने का इम्कान कम रह जाता है। हाँ, जो तजारती लेन देन दस्त बदस्त यानी हाजिर तुम लोग आपस में करते हो इसको ना लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं। आप गए दुकान पे, चीज ली, पैसे दिए, चीज लेकर आ गए, इट्स ओके। यहां तो आप देखिए छोटी छोटी स्लिप भी बनती है ना, लेकिन जहां कर्ज का मामला हो यानी जिसमें पैसे बाद में दिए जाएंगे या पार्शियल पेमेंट बाद में है कुछ पहले, तो उसको जरूर ही लिख लेना चाहिए। बस दफा हम रिश्तेदारियों के नाम पे नहीं लिखते, नहीं ना, आप दो भाइयों ही की तो बात है फिर क्या हुआ, चलो बाप बेटे की बात है, और बाद में उधर ही खराबी आती है। तो दो शर्तें हैं किसी को कर्ज देने की, नंबर एक उसको लिखिए, गवाह बनाइए, और साथ ही साथ पूछिए कब वापस करोगे। आप कहते तो बड़ा बुरा लगता है, नहीं लिखेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपने कहा 1 महीने बाद वापस कर देना, वो नहीं दे सका। आज से लेके 1 महीना हर दिन उतना माल सदका करने का अजर है, और उस 1 महीने के गुजरने के बाद हर दिन उससे दुगना अजर मिलेगा आपको, तो लिख लेना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नहीं लेने की नीयत फिर भी लिख लीजिए, मगर तिजारती मामले तय करते वक्त गवाह कर लिया करो। मगर तिजारती मामले तय करते वक्त गवाह कर लिया करो, कातिब और गवाह को सताया ना जाए। ऐसा करोगे तो गुनाह का इर्तकाब करोगे, अल्लाह के गजब से बचो, वो तुमको सही तरीके अमल की तालीम देता है और उसे हर चीज का इल्म है। अब देखिए कि अल्लाह का दीन हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाता है दुनिया की कोई ऐसी किताब जो आपको कर्ज देने के तरीके भी सिखाए? और मैं अक्सर फिर कहूंगी यही बात कि जो लोग कुरान को जस बराए कुरान पढ़ते हैं, फिर ये आयते दैन की क्या जरूरत थी, इसकी इतनी बारीकियों की क्या जरूरत थी? तो इससे क्या पता चलता है कि कुरान किताब हिदायत है, समझे बगैर इसको पढ़ने से सवाब होगा, लेकिन हिदायत कब मिलेगी, जब हम इसको समझ के पढ़ेंगे। अब इसके बाद रहन, जिसको मॉर्गेज कहते हैं आज के दौर में, अगर तुम सफर की हालत में हो और दस्तावेज लिखने के लिए कोई कातिब ना लिखे तो रहन बिल कब्ज पर मामला कर दो, यानी कोई तुम्हें कर्ज भी नहीं देता। पहली चीज क्या थी, आइडियल सदका, अब सदका कोई देता नहीं है, मिलता नहीं, तो दूसरी चीज है सूद, वो ले नहीं सकते, तो अब बीच की चीज क्या कि कर्ज ले लो। अब आखिरी सूरत रह गई कि कोई आपको कर्ज भी नहीं देता, आप पे भरोसा ही नहीं करता, तो फिर क्या करो, अपनी घड़ी दे दो, कहना ये मेरी तुम गिरवी रख लो और मुझे इसके बदले में कुछ दे दो। ये चीज अभी हम पढ़ रहे हैं। अगर तुम में से कोई शख्स दूसरे पर भरोसा करके इसके साथ कोई मामला करे, तो जिस पर भरोसा किया गया इसे चाहिए कि अमानत अदा करे और अल्लाह अपने रब से डरे, और शहादत हरगिज ना छुपाओ। जो शहादत छुपाता है इसका दिल गुनाह में आलूदा है, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं। क्या पता चला कि लेन देन के मामलात में बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सूरत बकरा के माली मामलात एक किनारे पर लगे। सारी बातों का खुलासा क्या है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि इनकी आपस में दिल खट्टे हों, दिल बुरे हों, खराबी हो। अब यहाँ से आखिरी रुकू शुरू होता है, जिसके बारे में आता है कि अल्लाह ताला ने मेराज के मौके पे अर्श पे बुलाकर रियायतें दी थी। जरा इनकी खूबसूरती को महसूस करिएगा कि अल्लाह ताला इसमें कितने प्यारे तरीके से हमारा अपने साथ ताल्लुक जोड़ते हैं। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो सब अल्लाह का है। क्या कहा, जो तुमसे मांग रहे वो भी उसी का है। पीछे चूंकि माली बातें थी, तो यहाँ दिल खोल दिया गया कि देखो है सब कुछ उसी का, लेकिन वो तुम्हें फिर भी मौका दे रहा है कि तुम उसके दिए को उसके रास्ते में लगा दो। तुम अपने दिल की बातें ख्वाह जाहिर करो ख्वाह छुपाओ, बहरहाल इनका हिसाब तुमसे अल्लाह लेगा। फिर इसे इख्तियार है जिसे चाहे माफ कर दे और जिसे चाहे सजा दे, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। हमें तो कुछ भी नहीं हुआ इस आयत को पढ़ के, सहाबा का तो रो रो के बुरा हाल हो गया। युहासिबकुम बिल्लाह, अल्लाह आप तुम्हारे दिल की बातों पे भी हिसाब लेंगे। हालांकि हमें तो नहीं पता होता, बहुत सारे ख्याल दिल में ऐसे आ जाते हैं। फिक्र लग गई, सहाबा परेशान थे। अबू बकर रोया करते थे मुहासबे के डर से, उमर रोया करते थे। किसी ने एक मौके पर उनको कह दिया या उमर इत्तकिल्ला, तो उमर जमीन पे अपने गाल चिपका के रोने लगे कि तुमने मुझे इतनी बड़ी हस्ती का डर दिला दिया। अल्लाह ताला हमें भी मुहासबे का फिक्र डाल दे। आमनर रसूल, रसूल इस हिदायत पर ईमान लाया जो इसके रब की तरफ से इस पर नाजिल हुई, और जो लोग उस रसूल की मानने वाले हैं उन्होंने भी इस हिदायत को दिल से तस्लीम कर लिया। ये सब अल्लाह और इसके फरिश्तों और उसकी किताबों और इसके रसूलों को मानते हैं, और इनका कौल ये है कि हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं करते, यानी किसी को माने और किसी को ना माने हम ऐसा नहीं करते। हमने हुक्म सुना और इताअत कबूल की। इस पे गौर कीजिए, सहाबा की ये शांति, अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे। सुन के मानना है, मालिक हम तुझसे खता बख्शी के तालिब हैं और हमें तेरी ही तरफ पलटना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी नफ्स को उसकी ताकत से भरकर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालता। हर शख्स ने जो नेकी कमाई है इसका फल उसी के लिए है, और जो बदी समेटी है इसका वबाल उसी पर है। ईमान लाने वालों, तुम यूं दुआ किया करो, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना, ए हमारे रब हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाए इन पर गिरफ्त ना कर। मालिक हम पर वो बोझ ना डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार जिस बोझ को उठाने की ताकत हम में नहीं वो हम पर न रख, हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम फरमा, तू ही हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। कैसे मक्की दौर के बिल्कुल आखिर में अल्लाह ताला इन आयतों के जरिए मुसलमानों को मदीना में पेश आने वाले हालात के लिए तैयार कर रहा था, तो बड़ी खूबसूरत और तवील सूरत आज हमने पूरी की है। कितना कुछ मिल गया। आप देखिए कि जिस चीज के साथ जितना वक्त लगाएं उससे उतनी मोहब्बत होती है। तो हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इस पूरी सूरत के हर हुक्म पे अमल करने वाला बनाए, हर मना की हुई चीज से रुकने वाला बनाए, इसके हर लफ्ज़ पे अल्लाह ताला हमें बरकत दे, अमल की तौफीक दे, हमारी जिस मामले में कभी बेशी है अल्लाह ताला उससे दरगुजर फरमाए।
ला युकल्लिफु अल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.